एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे उपन्यास की जिसने काफी चर्चा बटोरी है, ऐसे कॉस्बी का ऑल द सिनर्स ब्लीड।
हाँ, ऐसे कॉस्बी वर्जीनिया से हैं और क्राइम फिक्शन में, खासकर सदर्न नॉयर या कह लीजिए रूरल नॉयर में एक बहुत ही दमदार आवाज माने जाते हैं।
बिल्कुल, और ये जानना भी दिलचस्प है कि ऑडियो बुक एडम लेजारे व्हाइट ने नरेट किया है, जिसकी काफी तारीफ हुई है। लेकिन हाँ, आज फोकस लेखक और उनकी कहानी पर रहेगा।
और ये सदर्न नॉयर का जिक्र आपने किया, ये अहम है। मतलब ये टिपिकल क्राइम कहानियों से हटके है ना?
हाँ बिल्कुल, जहाँ आमतौर पर नॉयर में शहर, जासूस, धुंधले किरदार होते हैं,
वहीं कॉस्बी हमें अमेरिकी दक्षिण के गांव देहात में ले जाते हैं। यहाँ अपराध सिर्फ अपराध नहीं होता, वो उलझा होता है नस्ल से, गरीबी से, इतिहास के बोझ से
और धर्म की अपनी जटिलताओं से भी। कॉस्बी इसी माहौल को बहुत बेबाकी से असलियत के करीब दिखाते हैं। उनके पिछले उपन्यास भी ऐसे ही थे, ब्लैक टॉप वेस्टलैंड, रेजर ब्लेड टीयर्स।
सही कहा। और ऑल द सिनर्स ब्लीड जो जून 2023 में आया, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाता है, लेकिन इसमें एक नया एंगल है।
हाँ, इस बार नायक कोई बागी या सिस्टम के बाहर का आदमी नहीं है, बल्कि खुद सिस्टम का हिस्सा है, एक अश्वेत शेरिफ अपने ही गृहनगर में।
तो आज हम इसी उपन्यास की गहराइयों में उतरेंगे। कहानी क्या है, किरदार कैसे हैं और कौन से बड़े सवाल ये उठाता है?
कहानी की सेटिंग है वर्जीनिया की एक काल्पनिक जगह चैरिन काउंटी।
सोचिए, एक ऐसी जगह जो दिखने में शांत है पर हवा में तनाव है, इतिहास का वजन है, वो टिपिकल सदर्न गॉथिक वाला फील।
हाँ, जहाँ चर्च की घंटियां भी बजती हैं और शायद अतीत के घावों की आहटें भी सुनाई देती हैं, क्षय, दबी हुई हिंसा, कट्टरता, सब कुछ।
और इसी माहौल में है टाइटस क्राउन,
हमारा मुख्य पात्र। पहले FBI एजेंट था, अब शहर की भागदौड़ छोड़कर अपने घर चैरिन काउंटी लौटा है और बनते ही इतिहास रच दिया, काउंटी का पहला अश्वेत शेरिफ।
ईमानदार है, काबिल भी, पर
अपना अतीत उसे परेशान करता है, FBI के वो अनुभव।
और ऊपर से ये जिम्मेदारी, पहला अश्वेत शेरिफ होना। उपन्यास में एक जगह जिक्र आता है ना कि पहला अश्वेत बनना सिर्फ दरवाजा तोड़ना नहीं था, बल्कि उसके बाद जो आएगा उसे झेलना था।
बिल्कुल, उसे सिर्फ कानून नहीं बनाए रखना, बल्कि उम्मीदों और शक के बीच एक संतुलन भी बनाना है।
और ये संतुलन बनाना कितना मुश्किल है, ये कहानी की शुरुआत में ही पता चल जाता है।
हाँ, वो स्कूल शूटिंग वाली घटना एकदम धमाके से शुरुआत होती है।
एक सम्मानित बुजुर्ग श्वेत टीचर मिस्टर स्पीयरमैन, उनकी हत्या कर दी जाती है।
और हत्यारा उसी का एक पूर्व छात्र लेटरल मैकडोनल्ड, एक अश्वेत नौजवान।
टाइटस और उसकी डिप्टी पहुंचते हैं, माहौल गर्माता है और लेटरल पुलिस फायरिंग में मारा जाता है।
बस इसके बाद तो चैरिन काउंटी जैसे उबलने लगता है, नस्लीय तनाव चरम पर। हाँ, श्वेत समुदाय गुस्से में है कि एक हिंसक अश्वेत लड़के ने टीचर को मारा। अश्वेत समुदाय गुस्से में है कि पुलिस ने एक और जान ले ली।
और टाइटस, वो बीच में फंसा है, पहला अश्वेत शरीफ, दोनों तरफ से दबाव, सच भी जानना है, शांति भी रखनी है।
हर कदम पर शक की निगाहें, ये पहला होने का बोझ और भारी हो जाता है।
लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं, एक भयानक मोड़ आता है।
हाँ, जब टाइटस लैटरल की चीजें खंगालता है, फोन, घर से मिले सुराग,
तो एक खौफनाक सच सामने आता है। वो टीचर मिस्टर स्पीयरमैन, वो लैटरल और शायद दूसरे बच्चों का यौन शोषण करा था,
जिसकी छवि एकदम साफ सुथरी थी। ये तो चौंकाने वाला था।
मतलब लैटरल की हरकत अचानक हुई हिंसा नहीं थी, वो सालों के शोषण का नतीजा थी, एक तरह का बदला।
और यहीं से पूरी कहानी बदल जाती है। स्कूल शूटिंग का मामला अब एक कहीं ज्यादा गहरे, ज्यादा भयावह रहस्य की तरफ इशारा करने लगता है।
और लैटरल के वो अजीब से आखिरी शब्द, लास्ट वुल्फ, डीमन इन द वुड्स, अब उनका मतलब ज्यादा गहरा लगने लगता।
हाँ, क्या ये सिर्फ एक आदमी का काम था या कोई बड़ा षड्यंत्र है? टाइटस को शक होता है कि वो शायद किसी सीरियल किलर का सामना कर रहा है,
एक ऐसा किलर जो शायद सालों से अश्वेत बच्चों को निशाना बना रहा है और जिसकी जड़ें काउंटी के काले इतिहास और शायद किसी विकृत धार्मिक सोच में हैं।
बिल्कुल, यहीं से टाइटस की जांच का फोकस बदल जाता है। अब वो सिर्फ एक हत्या की जांच नहीं कर रहा, वो पुराने ठंडे पड़ चुके मामलों की फाइलें खोल रहा है,
लापता अश्वेत बच्चों के मामले,
और उसे एक पैटर्न देखने लगता है, अपराध की जगहों पर बार बार मिलने वाला एक निशान, वो भेड़िए के सिर जैसा कुछ।
हाँ, खुरदुरा सा उकेरा हुआ, ये निशान उसे लोकल कहानियों और काउंटी के हिंसक अतीत की तरफ खींचता है, खासकर वो लिंचिंग वाली घटनाएं जिनका जिक्र भी लोग दबी जुबान में करते हैं।
लेकिन सच खोजना आसान कहाँ है, मुश्किलें बहुत हैं।
हाँ, काउंटी का जो पावर स्ट्रक्चर है, खासकर श्वेत सत्ता, वो मामले को दबाना चाहती है। हिलियार्ड जैसे अमीर बिजनेसमैन,
उन्हें डर है कि सच बाहर आया तो काउंटी की बदनामी होगी, बिजनेस पर असर पड़ेगा।
तो एक तरफ इनका विरोध, दूसरी तरफ खुद अश्वेत समुदाय में भी कुछ लोग शक कर रहे हैं टाइटस पर। उन्हें लगता है कि वो अब उनका नहीं रहा, सिस्टम का आदमी बन गया है।
यही उपन्यास अपने असली सवालों पर आता है, न्याय बनाम कानून, इतिहास का असर और सत्ता में बैठे एक अश्वेत व्यक्ति की नैतिक कश्मकश।
टाइटस को इन सब के बीच रास्ता निकालना है, भले ही लीक से हटना पड़े।
और वो जिस बुराई का पीछा कर रहा है, वो कोई आम अपराधी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरू में तो लगता है जैसे कोई परछाई हो, कोई अदृश्य ताकत, पर धीरे धीरे शक्ल साफ होती है, एक या कई सीरियल किलर
जो अश्वेत बच्चों को चुन चुन कर मार रहे हैं, और हत्याएं भी किसी भयानक रस्म की तरह।
और इसका सोर्स वो तो और भी डरावना है। जांच टाइटस को एक लोकल चर्च तक ले जाती है, द चर्च ऑफ द होली रेमनेंट,
एक कट्टरपंथी चर्च जिसकी आड़ में एक गुप्त श्वेत वर्चस्ववादी पंथ चल रहा है।
हाँ, वो खुद को स्पीयर ऑफ गॉड यानी ईश्वर का भाला मानते हैं, और उनकी सोच बेहद विकृत है। वो मानते हैं कि अश्वेत बच्चों की बलि देकर वो दुनिया को पाप से मुक्त कर रहे हैं।
ये सिर्फ कुछ पागल लोगों का काम नहीं है, इसकी जड़ें गहरी हैं। श्वेत श्रेष्ठता की सोच, नस्लवाद जो पीढ़ियों से चला आ रहा है, और कहीं ना कहीं समुदाय की चुप्पी।
हाँ, कॉस्बी यही दिखाते हैं कि सबसे बड़ी बुराई अक्सर किसी राक्षस के रूप में नहीं आती।
बिल्कुल, जैसा उपन्यास में कहा गया है, बुलाई कोई सींग और पूंछ वाला राक्षस नहीं थी, यह उसके पड़ोसी का चेहरा था।
ये उस आदमी की मुस्कान थी जो रविवार को चर्च में भजन गाता था और सोमवार को बच्चों की लाशें दफनाता था। ये बात रोंगटे खड़े कर देती है।
टाइटस अपनी पुलिस की ट्रेनिंग, गवाहों से पूछताछ, सबूतों के आधार पर धीरे धीरे इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश करता है।
उसे चर्च के नीचे वो छिपा हुआ कमरा मिलता है जो उनकी क्रूरता का सबूत है, भयानक।
और इस पूरी जांच के दौरान टाइटस खुद भी बदल रहा है।
हाँ, शुरू में उसे सिस्टम पर यकीन था, शेरिफ बनकर बदलाव लाने का यकीन,
लेकिन चेरन काउंटी का सच देखकर, सिस्टम की सीमाएं देखकर, नस्लवाद की गहरी जड़ें देखकर उसका मोह भंग होता है।
वो समझने लगता है कि कभी कभी न्याय के लिए कानून की हदें पार करनी पड़ती हैं, कीमत चुकानी पड़ती है।
उसका अंदर का संघर्ष साफ दिखता है, ड्यूटी, उसका अपना टूटता हुआ विश्वास, उसकी निराशा।
वो धीरे धीरे एक कानून के रखवाले से शायद बदला लेने वाले में तब्दील हो रहा है।
और इस सफर में उसके साथ और भी लोग हैं। उसके पिता एल्बर्ट क्राउन पादरी हैं, शांत मजबूत आस्था वाले,
जो टाइटस के बढ़ते शक और गुस्से के बिल्कुल उलट हैं। उनका रिश्ता भी काफी जटिल है, पर वो टाइटस के लिए एक नैतिक सहारे जैसे हैं।
फिर टाइटस का छोटा भाई है मार्क्विस, ज्यादा गुस्सैल, सिस्टम पर भरोसा नहीं करता।
वो समुदाय के उस गुस्से और हताशा को दिखाता है जिसे टाइटस संभालने की कोशिश कर रहा है।
और डार्लिन, टाइटस की प्रेमिका, वो उसके लिए एक सामान्य जिंदगी, सुकून का प्रतीक है, वो सब कुछ जो इस केस की वजह से खतरे में है।
ये सब किरदार और चैरन काउंटी के बाकी लोग अपने डर, अपने पूर्वाग्रह, अपनी चुप्पी, अपनी हिम्मत के साथ उस पूरे सामाजिक ताने बाने को बनाते हैं जिसमें ये कहानी चल रही है।
जैसे जैसे टाइटस सच के करीब पहुंचता है, खतरा पर्सनल हो जाता है।
हाँ, पंथ अब सीधे टाइटस और उसके अपनों को निशाना बनाता है, धमकियां, उसके पिता के चर्च पर हमला।
अब ये सिर्फ एक केस नहीं, टाइटस की अपनी जान बचाने की लड़ाई बन जाती है। वक्त कम है और वो अकेला पड़ता जा रहा है।
उसे अब ऑफिशियल तरीकों से हटकर सोचना पड़ रहा है, काम करना पड़ रहा है।
और फिर आता है क्लाइमैक्स, उपन्यास का चरम बिंदु।
चैरन काउंटी में भयंकर तूफान आता है, और उसी तूफान की रात, उसी चर्च में टाइटस का सामना होता है हथियारों से।
वो टकराव बहुत भीषण है, रक्त रंजित, गोलियां, खून खराबा।
ये सिर्फ फिजिकल लड़ाई नहीं है, ये अच्छाई बुराई, आस्था अंधविश्वास, न्याय बदला, इन सब के बीच की लड़ाई है।
और उसी टकराव में पूरे षड्यंत्र का, उसकी विभत्सता का पर्दाफाश होता है। पता चलता है कि कौन कौन सम्मानित लोग इसमें शामिल थे।
अंत में टाइटस कह सकते हैं कि जीतता है, हत्यारे मारे जाते हैं, पंथ बेनकाब होता है,
न्याय होता है, पर यह कोई साफ सुथरी जीत नहीं है। ये बहुत ही क्रूर आदिम किस्म का न्याय है, और इसकी कीमत बहुत बड़ी है।
चैरन काउंटी हिल जाता है, अंदर की सड़ांत बाहर आ जाती है,
और टाइटस वो बच तो जाता है, पर शायद हमेशा के लिए बदल जाता है। जिस्म पर जख्म है पर आत्मा पर उससे भी गहरे।
हाँ, उसकी मासूमियत छिन जाती है। ईश्वर पर जो थोड़ा बहुत भरोसा बचा था वो भी खत्म। अब उसे अपनी करनी और दुनिया की इस बेरहम सच्चाई के साथ जीना है।
उपन्यास का अंत कोई खुशनुमा नहीं है, उदास है, सोचने पर मजबूर करता है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि बुराई खत्म नहीं हुई है, वो बस कुछ वक्त के लिए दब गई है। नफरत की जड़ें अभी भी मौजूद हैं।
तो अगर हम पूरी कहानी को देखें तो मुख्य विषय क्या उभर कर आते?
कई हैं। सबसे बड़ा तो है अमेरिकी दक्षिण में नस्ल, न्याय और सत्ता का खेल। कैसे सिस्टम ही कई बार अन्याय का जरिया बन जाता है।
फिर आस्था का सवाल, कैसे धर्म जो सहारा होना चाहिए उसे नफरत फैलाने का हथियार बना लिया जाता है।
हाँ, वो लाइन बहुत चुभती है उपन्यास में। लोग ईश्वर में सिर्फ विश्वास नहीं करते थे, वे उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे। ये आस्था का दुरुपयोग है।
बिल्कुल, और बुराई की प्रकृति कैसे वो अक्सर बहुत साधारण दिखती है, हमारे आसपास ही होती है।
अतीत का बोझ, कैसे इतिहास, खासकर नस्लीय हिंसा का इतिहास, आज भी पीछा नहीं छोड़ता।
और टाइटस के जरिए एक अच्छे आदमी होने का बोझ, सच बोलने की कीमत, ये सब भी दिखाया गया है।
और कॉस्बी का लिखने का तरीका, वो भी कमाल का है।
हाँ, थर्ड पर्सन नैरेटिव है टाइटस के नजरिए से। ढांचा तो पुलिस प्रोसीजरल का है, पर उसमें टाइटस का आत्ममंथन, उसके नैतिक सवाल उसे कहीं ज्यादा गहरा बना देते हैं।
और भाषा, एक तरफ क्रूरता है, हिंसा का बेबाक चित्रण है, तो दूसरी तरफ उसमें एक काव्यात्मकता भी है, एक ताकत है।
बिल्कुल, बिम बहुत शक्तिशाली हैं। प्रकृति, धर्म, इनके रूपक गहरा असर छोड़ते हैं। प्रतीकवाद का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है, वो भेड़िया, चर्च,
सदन गॉथिक वाले तत्व, शय, हिंसा, कट्टरता, विडंबना भी है। टाइटस की अपनी भूमिका की विडंबना, हत्यारों का बाइबल इस्तेमाल करना, ये सब कहानी को कई परतें देते हैं।
तो पाठक के लिए कैसा अनुभव ऐसे पढ़ना?
आसान नहीं है, ये हिला देता है, गुस्सा दिलाता है, दुखी करता है, अंत में कोई चैन या सुकून नहीं मिलता।
हाँ, एक भारीपन रह जाता है।
ये सोचने पर मजबूर करता है, न्याय की असली कीमत क्या है, नफरत कितनी गहरी है, उम्मीद कैसे बचाई जाए। टाइटस की कहानी जीत की नहीं बल्कि टिके रहने की कहानी है।
एक मुश्किल दुनिया में सही करने की कोशिश करते एक इंसान का बहुत ही ईमानदार, कभी कभी क्रूर चित्रण।
बिल्कुल।
तो आखिर में ये कहानी हमें आज के बारे में क्या सिखाती है, ये क्यों मायने रखती है?
शायद इसलिए कि ये हमें उन कड़वी सच्चाइयों का सामना करने को कहती है जिनसे हम नजरें चुराते हैं, हमारे समाज में छिपी बुराई, इतिहास का असर और न्याय की मुश्किल लड़ाई।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।